नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदिस अबाबा में इथियोपिया के संसद की संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ग्लोबल साउथ अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में स्वाभाविक साझेदार है और लोकतंत्र उसके लिए जीवन जीने का एक तरीका है। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को बुलाकर पड़ोसी देश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता जताई। भारतीय फिल्म होमबाउंड 98वें ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामित और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इथियोपिया एक परिवार के सदस्य के रूप में साथ खड़े हैं और अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समानतापूर्ण और अधिक शांतिपूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे। वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण अपना भविष्य स्वयं लिख रहा है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एकजुटता में शक्ति है और सहयोग में सामर्थ्य। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनके शासनकाल के पिछले 11 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध कई गुना बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अदिस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली ने सर्वोच्च पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को भारत इथियोपिया साझेदारी को मजबूत करने के उनके असाधारण योगदान और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनकी दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथियोपिया की राजधानी अदिस अब्बास में अदिस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित एक वैश्विक समारोह में प्रदान किया गया। श्री मोदी ने यह पुरस्कार दोनों देशों में उन लोगों के समर्पित किया जिन्होंने सदियों से द्विपक्षीय संबंधों को पोषित किया है।
यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। 1896 के संघर्ष में सहयोग देने वाले गुजराती व्यापारी हो, इथियोपियन मुक्ति के लिए लड़ने वाले भारतीय सैनिक हो, या शिक्षा और निवेश के माध्यम से भविष्य संवारने वाले भारतीय शिक्षक और उद्योगपति।
गृहमंत्री अमित शाह तथा स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया है कि किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कूटनीति को दिया गया 28वां सम्मान है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा है कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की सफल यात्रा के बाद ओमान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। भारत और ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने और सदियों पुराने व्यक्तिगत संबंधों का जश्न मना रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करते हैं और इससे निपटने के लिए एक दूसरे के साथ रणनीति रूप से भी दोनों देश एक दूसरे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओमान के मस्कत में हमारे संवाददाता से बातचीत में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास ने कहा है कि दोनों देश सहिष्णु से और धर्मों का पूर्ण सम्मान करते हैं।
भारतीय राजदूत जीवी श्रीनिवास ने कहा कि रणनीतिक रूप से दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के तीनों सशस्त्र बलों सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच रणनीतिक सहयोग बहुत ज्यादा है।
स्ट्रेटेजिकली आल्सो रणनीतिक रूप से भी हम एक दूसरे के लिए समुद्री परिवहन और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण है। जल क्षेत्र में शांति के साथ व्यापार और लोगों के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करना भारत और ओमान का साझा प्रयास है। जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति न केवल शांति स्थापित करने और आपदाओं से निपटने में सहायक है बल्कि समुद्र में संभावित आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम से शुरू हो रहे अपने दौरे के दौरान ओमान के सुल्तान के साथ आपसी हितों के अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यहां पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल दोनों देशों के बीच बिजनेस लीडर से मिलेंगे और यहां कई पीढ़ियों से रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। लिए मस्कट ओमान से आकाशवाणी समाचार।
लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025 विधेयक विचार विमर्श और पारित करने के लिए रखा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण हेतु परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर अग्रसर है और सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
अब इस बिल को लाने का भाव क्या है, कारण क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का भौगोलिक स्तर पर रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 जब हिन्दुस्तान अपनी आजादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा, बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी।
भारत ने आज बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को बुलाकर बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त को कुछ चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों के बारे में सूचित किया गया है जिन्होंने ढाका में भारतीय दूतावास के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत बांग्लादेश में हाल की कुछ घटनाओं के संबंध में चरमपंथी तत्वों पर फैलाई जा रही भ्रामक अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करता है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में शांति और स्थिरता का पक्षधर है और उसने लगातार शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने का आह्वान किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या सबसे अधिक है और देश में कॉल दरों में 97% की गिरावट आई है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान श्री सिंधिया ने यह बात कही। भारत टेलीकॉम 2025 और स्थानीय क्षेत्रों में बीएसएनएल नेटवर्क की पहुंच से संबंधित ये अन्य प्रश्न पर उनके कहा है कि पिछले 5 वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में भारत के निर्यात में 72% की वृद्धि हुई है।
कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी है सर। तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में।
भारतीय फिल्म होमबाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। नीरज खेवान के निर्देशन में बनी यह फिल्म इस श्रेणी के लिए नामित 15 फिल्मों में शामिल है। पुरस्कार के विजेता की घोषणा आगामी 15 मार्च को होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज लखनऊ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की 3 T20 श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। 5वां और आखिरी मैच शुक्रवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा रूट पर कवच सिस्टम चालू कर दिया है। यात्रियों और ट्रेन संचालन की सूचना बढ़ाने और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच शुरू किया गया है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने ये बात कही। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया है कि 2024-25 में देश की कोयला उत्पादन पहली बार लगभग 1 अरब टन तक पहुंच गया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री रेड्डी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोयला क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए गए हैं। श्री रेड्डी ने कहा है कि कोयले की भूमिगत गैसीकरण की क्षमता रखने वाली 21 खदानों की नीलामी चल रही है। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची से 58 लाख नाम हटाए जाने पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा है कि बंगाल में मीडिया द्वारा 1 करोड़ से अधिक संदिग्ध मतदाताओं की खबरें आ रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदिस अबाबा में इथियोपिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ग्लोबल साउथ अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के स्वाभाविक साझेदार हैं और लोकतंत्र उनके लिए जीवन जीने का एक तरीका। भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को बुलाकर पड़ोसी देश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल पर गहरी चिंता जताई और भारतीय फिल्म होमबाउंड 98वें ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।